Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और विजातीय भेद भी नहीं है. एक महात्मा जी बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे इस विषय को समझाने के लिए. जैसे आपको गांव में कहीं भोजन का निमंत्रण मिला और आप भोजन करने के लिए किसी के घर में गए, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ साथ आपका कुत्ता भी चल पड़ता है गांव में. उसको हटाओ लेकिन वो मानता नहीं, वो भी चल पड़ता है. आप निमंत्रण के लिए गए और आपके साथ साथ वो कुत्ता भी आ गया. जहां भोजन करने के लिए गए थे उन्होंने पूछा, आप आ गए, बहुत अच्छा हो गया, स्वागत है, स्वागत है. कितने लोग आ गए, तो आदमी क्या बोलता है, मैं आ गया हूं, अकेला आ गया हूं. लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि मेरा कुत्ता भी मेरे साथ आया है, नहीं बोलता है. कारण क्या है कि वहां कुत्ता जो है ना भेद नहीं करता है. वो उसका जो अपना जो अस्तित्व है उसकी बराबरी वो नहीं करता है. चाहे लाख बार पूछो लेकिन वो यही बोलेगा, भैया मैं अकेला ही आया हूं, अकेला ही आया, मैं ही अकेला आया. ऐसे ही नारायण, जैसे एक कुत्ता और एक मनुष्य है, विजातीयता इसको बोलते हैं, विजातीय. और वहां व्यवहार में कम से कम भेद भी हैं, भले वहां नहीं बोलता हो लेकिन भेद तो हैं. लेकिन ब्रह्म में विजातीय तत्व भी नहीं है. जैसे ब्रह्म है और विजातीय कोई दूसरा, दूसरे जाति वाला तो ईश्वर होगा भाई. अपने जाति वाला नहीं होगा तो दूसरे जाति वाला होगा कि ये हिंदू हैं, ये हिंदू भगवान है, तो हिंदू जाति वाला हो गया. और दूसरा मुसलमान है, मुसलमान जाति वाला होगा, अल्लाह होगा तो मुसलमान जाति वाला होगा. और हिंदुओं के जो भगवान है वो हिंदू जाति वाले होंगे. राजस्थान में एक मंदिर है बहुत सुंदर, करौली के मदन मोहन जी. ये तीन ठाकुर बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, वृंदावन के बांके बिहारी जी, जयपुर के गोविंद देव जी और करौली के मदन मोहन जी. और इन तीनों के दर्शन आप करते हैं तो ठाकुर जी के एक पूरे दर्शन मान लिए जाते हैं. वहां पर एक कोई व्यक्ति था, वो मुसलमान था, नवयुवक था, बड़ा बीमार हो गया, बहुत सी दवाएं की लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था. तो बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि वैद्यों ने कहा कि अब तुम ठीक नहीं होगे, तुम मरोगे. अब बहुत परेशान हो गए घर के लोग. तो बैठे बैठे उनके दिमाग में आया, सारी दुनिया तो मदन मोहन जी के मंदिर में आती है और ठीक होके जाती है, मेरे गांव में मेरे घर के बगल में भगवान है और मैं इधर उधर भटक रहा हूं. चलो अब हम जाके मदन मोहन जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको ठीक करो. वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने प्रार्थना की, प्रतिदिन जाने लगे लेकिन कोई बदलाव नहीं आया. एक दिन उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया. वहां एक पद्य लिखा हुआ है, अभी भी लिखा है. बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मदन मोहन जी को गाली दी, दो चार गाली भी दी उन्होंने. और गाली देकर के बहुत मजेदार बात बोली, उन्होंने कहा तुम यदि केवल हिंदुओं के खुदा हो तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन तुम दुनिया के खुदा हो तो मेरी भी सुन लीजिए. दुनिया के खुदा हो तो मेरी भी सुन लीजिए. हाँ लेकिन एक बात है, यदि केवल हिंदुओं के खुदा हो तो बोले कोई बात नहीं, तुम हिंदुओं की सुन लो, हम तो चले जाते हैं. लेकिन तुम दुनिया की, यदि दुनिया के खुदा हो तो मेरी एक सुन लीजिए, मेरे को ठीक कर दीजिए, मैं मुसलमान हूं. और वो इतना बोला करते हैं और वो मूर्छा जैसी हो गई, उनको आंख बंद हो गई और वो बैठा रहा, गुमसुम बैठा रहा. और जब उसको होश आया ना, जैसे होश आया उनको, सारे रोग ठीक हो गए. और नाचने लगा, गोल गोल घूमते हुए नाचने लगा, बोले मेरे को मदन मोहन जी ने ठीक किया. और उन्होंने कहा कि अब सिद्ध हो गया कि ये केवल हिंदुओं के खुदा नहीं है, ये दुनिया के खुदा है, सबके खुदा है. वो पद्य भी है, बड़ा सुंदर पद्य है, मेरे को याद नहीं है। इतना तो याद है, हिंदू के खुदा हो, बोले कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के खुदा हो तो मेरी भी सुन लीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है कि मुसलमानों का खुदा कोई अलग होगा और उनकी जाति होगी मुस्लिम, और हिंदुओं का खुदा होगा उसकी जाति होगी हिंदू, ईसाइयों का खुदा होगा उसकी जाति होगी ईसाई, ऐसा नहीं है। भगवान में विजातीयता नहीं है, ये वेदों की घोषणा है, ये वेदों की घोषणा है, ये भगवान की विजातीयता नहीं है। दूसरा भगवान ही नहीं है, दूसरी जाति में भी भगवान नहीं है। अच्छा, तो हिंदुओं में होगा तो मुसलमानों में भगवान नहीं होगा? नहीं नहीं, जो यहां का है वही वहां का है, जो वहां का है वो यहां का है, जो ईसाइयों में है ना वही हिंदुओं में, अलग नहीं है, एक ही है, एक ही सुप्रीम शक्ति, सारी दुनिया की शक्ति एक है। और उसको अनेक नामों से आप जान लेते हैं, हमें अनेक नामों से आप जान लेते हैं उसको, बस एक व्यक्ति है। और उसी एक व्यक्ति को अलग अलग नामों से बोलते हैं कि नहीं लोग? हाँ बोलते हैं। आपको कोई पिताजी बोलते होंगे, कोई डैडी बोलते होंगे, कोई डैड बोलते होंगे, कोई आपको मामा बोलता होगा, कोई आपको ताओ बोलता होगा, कोई चाचा बोलता होगा, अनेकों नामों से आपको पुकारे जाते हैं आप, और उसके बाद भी आप क्या होते हैं? एक। एक ही चीज को अनेकों नामों से भले ही कोई बोल दे, लेकिन उसकी एकता कभी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा एक होता है। ऐसे उसी तत्व को आप बोलो अल्लाह, उसी तत्व को आप बोलो परमेश्वर, उसी तत्व को बोलो आत्मा, उसी तत्व को बोलो ब्रह्म। प्रत्यक त्वंपद लक्ष्य कूटस्थ साक्षी, अनेकों अनेकों नामों से आप उसको बोलो, लेकिन वो चीज है एक। इसलिए श्रुति कहती है यदेवेह तदमुत्र तदमुत्र तदन्वीह, यद एव इह, श्रुति कहते जो यहां है ना यहां, तद अमूत्र वो वहां भी है। ऐसा नहीं है कि यहां का अलग है और वहां का अलग है, यहां का माने हिंदुओं का अलग है और वहां का माने मुसलमानों का अलग है, ऐसा नहीं है। जो यहां है वो वहां है और जो वहां है वो यहां, जो तत्व वहां है। यदि वहां होता ना तो इसको बोलते देशकृत परिच्छेद, जो तत्व यहां है वो वहां नहीं होता तो उसको बोलते देशकृत परिच्छेद, समझ में? एक बड़ा सुंदर भाव है, जब कौशल्या माता प्रभु श्री राम को सुलाकर भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी, बहुत बड़ी पूजा कर रही थी मैया, बहुत सारे लड्डुओं का भोग भगवान के सामने रखा था, भगवान राम तो छोटे से पालने में सो रहे थे और मैया भगवान को भोग लगा रहे थे। और जैसे मैया ने भगवान का भोग लगाया, आंखें बंद करके घंटी बजाई और आंखें खोली, मां सशक्त हो गई, मां ने देखा कि राम वहां बैठ करके लड्डू खा रहे हैं। मां को आशंका इसलिए हुई कि मां सोचने लगी, अरे रे रे रे, भगवान को भोग लगाना था, मेरे बेटे ने इसको खा लिया, झूठा कर दिया। और झूठा भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। और मां ने परेशान होकर के अपने दासी को पुकारा और बोला कि तुम जाके दूसरे लड्डू ले आओ, ये झूठे हो गए। और वो दासी समझ नहीं पा रही थी, अब वो साम्राज्ञी नारायण उनकी आज्ञा मान करके वो लड्डू ले आए रखा। अचानक उनको लगा कि मेरा राम तो बहुत छोटा है, पहले मालूम नहीं पड़ा, राम तो बहुत छोटा है, पालने में सो रहा है, पालने में सो रहा है, पालने से उतर भी नहीं सकता, लड्डू खाने की तो बात ही छोड़ो, फिर ये कौन है ये? और वो उसी समय भी गपागप खाते जा रहे थे, मां की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे कि मानो मां रोकने वाली हो। मां को आश्चर्य हुआ, मां सोचने लगी कि हो सकता है कि वहां से यहां आया हो, मां दिग्भ्रमित हो गई। मां सोचने लगी कि हो सकता है वहां से यहां आया हो, मैं देख तो लेती हूं पालने में है कि नहीं हो। दौड़ करके मां ने देखा पालने में भी सो रहे हो। मां ने सोचा कि जब पालने में सो रहा है तो ये मंदिर में जरूर नहीं होगा। दौड़ते हुई गई और मंदिर में देखने लगी, वहां भी बैठ के भोजन लड्डू खा रहे। फिर मां दौड़ते हुई गई, वहां देखा वहां पर भी भगवान सो रहे। और उसके बाद फिर भगवान ने दिखाया कि मां मेरे को यहां आने के लिए वहां नहीं होने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य दुनिया के पदार्थों का नियम है। आप जब घर में होते हैं तो आप बाहर नहीं होते हैं, और बाहर होते हैं तो घर में नहीं होते हैं। आप एक देशी हैं और परमात्मा विष्णु नारायण ब्रह्म ये सर्वदेशी हैं, कणकण में व्याप्त हैं, और इसीलिए वो सर्वत्र हैं, एक समय में सभी देशों में रह सकते हैं। तो भगवान ने मां को दिखाया, मां जो वहां है वो यहां है, और यहां है वो वहां है। यद एव इह तद आमूत्र, और यद आमूत्र तद अन्वय, जो यहां है वो वहां है, और जो वहां है वो यहां है। एक ही समय में आप समय भेद से दो जगह पर रह सकते हैं। आप यहां हैं अभी, और इसके बाद अब अपने घर में होंगे। यहां भी हैं वहां भी हैं, लेकिन समय का भेद है। लेकिन एक समय में दो जगह पर रहना मुश्किल है। लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि मैया जो वहां है पालने में वहीं या मंदिर में है, और जो मंदिर में है वही पालने में है। और भगवान ने मैया को यही दिखाया कि मैया जिसको आप भोग लगा रही हो ना, वो भी मेरे से अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यशोदा मैया को अनेकों बार दिखाया, अपनी अनंतता के दर्शन कराए, मां को अपने मुख में दर्शन कराए। और उस समय भी मां देख रहे थे अनंत अनंत अनंत, इसके अनंत अनंत, और वो कहां दिखाई दे रहे थे अनंत मां देख रही थी इसका मुख भी अनंत है, कहीं अंत है क्या? मां जब देखती थी तो लगता था कि छोटा सा मुख है, छू के देख रहे छोटा सा मुख है। भगवान जब मां को अपने मुख में दर्शन करा रहे थे, उस समय भगवान कितने छोटे थे? बहुत छोटे थे, गोद वाले भगवान थे, गोद वाले। और मां देख रही थी मुख छू के, इतना सा छोटा सा मुख है। और उसके बाद भी मां देख रही थी, अनंत सूर्य उसमें चमक रहे थे, अनंत सूर्य, नक्षत्र तारांगन सातों समुद्र वहां उमड़ रहे थे, उस मुख में उमड़ रहे थे। और वो उमड़ रहे थे तो उसकी आवाज आ रही थी कि नहीं? और वो आवाज कैसी आ रही होगी? कभी आप समुद्र के किनारे जाके खड़े होना, यहां का समुद्र तो बहुत शांत है, यहां का समुद्र तो मालूम ही नहीं पड़ता है। आप सोमनाथ जी का समुद्र देख रहे, आपने देखा होगा समुद्र, और वो ऐसा उमड़ता है डर लग जाता है आदमी को। हाँ, आप वहां जो अतिथि ग्रह है उसमें आप रुक जाना, बिल्कुल किनारे पर अतिथि ग्रह है, रात में तो डर लग जाता। मैं रात में जैसे जगा और इतना आवाज, ऐसा लगता है कि हमको बाहर ही जाए, भयंकर आवाज। और मां जब देख रही थी समुद्र तो कहां देख रही थी? अरे मुख में नहीं, गोद में। मां जब देख रही थी ना, वो समुद्र ये छोटा मोटा ये समुद्र नहीं, सातों समुद्र उमड़ रहे वो देख रही थी। कहां देख रही है? गोद में। तो मां को कैसा लगा होगा? मां भयभीत हो गई। हाँ, और वो अनंत सूर्य देख रही थी मां, अनंत सूर्य। यदि एक ही सूर्य जी ज्यादा तप जाए तो आप नमो नमो हो जाते हैं। एक ही सूर्य तप जाए ज्यादा, और वो अनंत सूर्य मां देख रही थी, अनंत सूर्य लाला के मुख में देख रही, अरे गोद में, अनंत में ही अनंत देख रही थी मां, अनंत में ही अनंत देख रही थी। भगवान ने दिखा दिया कि मैया मेरे लिए देश का महत्व नहीं है, सारे देश मेरे में हैं। अच्छा, भगवान किसी देश में है कि भगवान में देश है? अरे देश भी भगवान में है। किसी देश में भगवान नहीं, भगवान को रहने के लिए देश की जरूरत नहीं, देश ढूंढता है मैं कहां रहूं। भगवान का मैं अब मेरे एक देश में रहो, मेरे एक देश में। भगवान के भी एक देश में देश रहता है, भगवान के एक देश में काल रहता है। ये सारी मेकाउन सेन स्थितो जगत, दसवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं कितना बड़ा हूं, सारी विभूतियां दिखा दी अर्जुन को भगवान ने, मैं ये हूं मैं ये हूं मैं ये हूं, वो सब दिखा दिया। और बोलने के बाद भगवान ने कहा अरे भैया मैं क्या बताऊं तुमको, मैं कौन से न स्थित हो जगत, ये सारा जो जगत है ना, जगत शब्द का प्रयोग किया, जगत जगत माने जहां तक जगत है, अनंत ब्रह्मांड सारा जो जगत है, एक पृथ्वी नहीं, एक कोई भारत नहीं है, सारा जगत। बोले कहां है, मैं कौन से न स्थित हो जगत, मेरे एक देश में अत्यतिष्ठ दशांगुलम, श्रुति कहती है अत्यतिष्ठ दशांगुलम, सारी दुनिया को व्याप्त करके भी वो बचा रहता है। अब वो कितना बचा रहता है उसका कोई पता नहीं है, इतना बड़ा भगवान है, अनंत देश अनंत काल अनंत वस्तुएं जिस परमात्मा में निवास करती हैं, जो सर्वाधिष्ठान है, और वो सब जगह पर है नारायण। और इसीलिए उनके लिए कहा यदे वेह यदमुत्र तदमुत्र तदन्विह मृत्यो हो स मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। भगवान ने कहा कि वही व्यक्ति जन्म मृत्यु के संसार को प्राप्त हो जाता है जो भगवान को नाना देखता है। अरे वो ना नाना है ना नानी है, ना वो दादा है ना दादी है, ना वो पिता है और ना पुत्र है, वो है केवल। इसलिए श्रुति ने कहा कि नाना न आस्ति, वो नाना नहीं है। और भगवान को नाना देखोगे तो क्या होगा, अरे आप स्वप्न में आप कौन है बताओ, नाना है नानी दादा दादी कोई है, आप स्वप्न में बैठे हैं और सारी दुनिया देख लेते हैं, स्वप्न में बहुत सारे पदार्थों को पैदा करते हैं आप, और पैदा करने के बाद आप जग गए और जगने के बाद बैठ के रोते हैं क्या, हाय हाय स्वप्न में इतना सारा संसार पैदा किया और वो सारा संसार मिट गया तो आप रोते हैं, नहीं रोते हैं। आप पैदा तो करते हैं लेकिन आपको मालूम है भैया वहां कुछ था ही नहीं, नानात्व नहीं था। आप स्वप्न में हजारों वस्तुओं को पैदा करते हैं लेकिन आपके एकत्व पर कभी आपत्ति नहीं आती, हमेशा आप एक बने रहते हैं। स्वप्न बहुत आप देखने के बाद ऐसे समष्टि दुनिया कितनी भी बने लेकिन परमात्मा के एकत्व में कोई नुकसान नहीं होता, कमी नहीं आती, हमेशा परमात्मा एक रहते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है वेद कहता है कि भैया आप उस परमात्मा के एकत्व का अनुभव करो, उस परमात्मा के एकत्व का अनुभव करो, वो परमात्मा एक है। और जो एक नहीं मानता है ना, वहीं पर नारायण जन्म और मृत्यु की श्रृंखला है। भेद जहां पर है ना, वहीं पर द्वैत है। और द्वितीयात भयम भवति, जहां दो में वासना है दो में भय है, और जहां वासना है ना वहां से जन्म मृत्यु है। एक में वासना नहीं होती है, एक में भय नहीं होता है। आप दो मित्र हैं एक कमरे में शयन करते हैं लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाए और एक ने दूसरे को बोला कि मैं तुमको मार दूंगा, अब आप उसके साथ कमरे में रहना चाहोगे कि नहीं राजेश जी, अरे बहुत दोस्त हैं वो बहुत गहरी मित्रता है, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उसने बोला है कि मैं मार दूंगा तुमको, और आपको यह भी मालूम पड़ा कि उसने पिस्तौल भी खरीद लिए अब आपको कितना भी प्रलोभन दे लेकिन आप अब उसके साथ कमरे में नहीं सोएंगे, द्वैत पैदा हो गया, द्वैत से ही भय है। द्वितीयाद्वय भयम भवती, आपका कितना भी प्रेम हो, एक कोई कथा सुनाते थे महात्मा, दो भाई थे, बहुत प्रेम था उनमें, बहुत प्रेम था, एक बार शर्त लगी कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा कौन लगाएगा। बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन झगड़ा नहीं लगा। बहुत कोशिश की लेकिन झगड़ा नहीं लगा। एक बड़ा चालाक आदमी था, उन्होंने कहा मैं झगड़ा लगाता हूं। लोगों ने बहुत समझाया था दोनों को झगड़ा लगाने के लिए, लेकिन झगड़ा नहीं लगा। बड़ा तेज आदमी था वो, उसने कहा कि मैं झगड़ा लगा देता हूं। दोनों भाई जा रहे थे, थोड़ा दोनों आपस में बिछुड़े, एक थोड़ा आगे निकल गया, एक दूसरा पीछे। वो आदमी जाके उसके कान में कुछ बोलने लगा। आगे वाले भाई ने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे भाई को मिला है और कुछ बातचीत हो रही है, और कान में कुछ बोल नहीं रहा था वो कान में कुछ पुटपुटा रहा था। सामने वाले को समझ में भी नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, कान में कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था उसको समझ में नहीं आया। बहुत देर तक बोला वो, और वो बोल के चला गया, दूर जाके खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग दूर से देख रहे थे, अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। आगे वाले भाई ने, जब पीछे वाला भाई आया तो पूछा, भैया वो आदमी मिला था? बोले हाँ मिला था। उसने क्या बोला? उसने बोला कुछ नहीं बोला। अरे बोले, इतना देर तक तुमसे बात की और कुछ नहीं बोला? बोले कुछ नहीं बोला। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बोले तुम झूठ बोल रहे हो, इतना देर तक तुम्हारे कान में बोला वो और उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। उसने बहुत समझाया कि भैया वो क्या बोला मेरे को मालूम है। अरे बोले कैसे संभव है, द्वैत हो गया। द्वितीयाद्वय भयम भवती, और जैसे द्वैत की नींव पड़ी और वहां भय शुरू हो गया। द्वैत की नींव पड़ी और वहां पर अलग होना शुरू हो गया, अलगाववाद शुरू हो गया। ऐसे ही नारायण हमारे कान में भी माया ने कुछ बोला है, और माया ने कुछ बोल के भेजा है, और उसके बाद फिर हमारे में भी अलगाव आ गया। एक महात्मा जी सुना रहे थे, यहां हर आदमी अपने को श्रेष्ठ समझता है। क्यों समझता है? जब वो ऊपर से नीचे उतरने लगता है ना, तो भगवान उसके कान में बोल देते हैं धीरे से, बेटा तुमको जैसा मैंने किसी को पैदा नहीं किया है। तुमको हमने बहुत मन लगा के पैदा किया है, मन लगा के। और जब हम नीचे आते हैं ना, तो हम अपने से ज्यादा किसी को भी श्रेष्ठ नहीं समझते। एक बार महात्मा गांधी और एक रूस के बहुत बड़े दार्शनिक थे, क्या नाम था उसका, टॉल्स्टॉय शायद वही होंगे, एक दूसरे भी थे कोई, बड़ा विद्रोही टाइप का आदमी था वो, कुछ है नाम मेरे दिमाग में। टॉल्स्टॉय को शायद गांधी जी ने देखा नहीं, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं शायद, पुस्तकें पढ़ी, हाँ गुरु मानते थे वो। तो एक बार की बात है, गांधी जी नहीं थे उस समय, अपने देश का एक व्यक्ति गया वहां, कोई सेमिनार था, गांधी जी की बड़ी प्रशंसा की गई वहां। तो उस दार्शनिक को यहां के गांधीवादी व्यक्ति ने पूछा कि भैया आप गांधी जी को मानते हो, बहुत मानते हो, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है कि आप गांधी जी से अपने को बड़ा मानते हैं कि अपने से गांधी जी को बड़ा मानते हैं? वो आदमी बड़ा मजेदार था। उस आदमी ने पूछा कि सही बात बोलूं कि गलत बोलूं, मैं सत्य कहूं कि झूठ कहूं? इसको भी आश्चर्य हुआ, सत्य कहना और झूठ कहना क्या मतलब, यदि कहना है तो कहना है कि गांधी जी बड़े कि मैं बड़ा। उन्होंने कहा कि यदि झूठ मूठ बोलना हो तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे से ज्यादा गांधी जी बड़े हैं, और यदि सही सही कहना हो ना तो भाई मैं बड़ा हूं, गांधी जी से मैं बड़ा हूं। बोले क्यों? अरे दुनिया में कोई आदमी किसी को अपने से बड़ा मानता है क्या? आदमी किसी को भी अपने से बड़ा नहीं मानता है, भले ही वो औपचारिकतावश सामने वाले को खुश करने के लिए बोल दे, हो तुम तो बहुत बड़े हो। अरे कई बार गुरु भी बोलता है, अपने शिष्य भी बोलता है अपने गुरु जी को, गुरु जी आप समझ नहीं रहे है ना। हम अपने गुरु को बोलते हैं कि नहीं? कई बार बोलते हैं, कई बार आप बोले भी होंगे, आप समझ नहीं रहे गुरु जी, ऐसा नहीं है, मतलब गुरु जी भी ना समझी हैं और उनसे भी ज्यादा हम समझदार हैं। कई बार लगता है कि भगवान ने गीता जी में ये जो बोला है ना, ऐसा नहीं बोला होता तो अच्छा होता। प्रत्येक आदमी अपने को श्रेष्ठ समझता है दूसरे की अपेक्षा। भगवान ने आपके अंदर डाल दिया, भेद डाल दिया, भैया तुम सबसे अच्छे हो, इसलिए हम दूसरे को स्वीकार नहीं करते। भेद द्वैत माया है ना, यहां पर भी भेद मालूम पड़ रहा है, माया है, मोह है, और वास्तविक सत्य जो है एक परमात्मा, उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए श्रुति आपको उद्घोषणा करके बता दी है कि एक ही भगवान है, दो भगवान नहीं है। आप जहां तक दृष्टि डालो अनेकों धर्म आपको दिखाई देंगे, लेकिन सभी धर्मों में एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है, उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। और जो भेद देखता है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।